Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Taittiriya Upanishad, presented by Swami Sri Ananda Andaji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
Bhakti Shakti Samita Vatsal Mayi Matao, Snehi Vihino, Aap Sarubandhu. Taittiriya Arandak Ki तैतृय उपनिषद के माध्यम से मंगलाचरण को लेकर के चर्चा की जा रही है। भाष्यकार का अनुवाद करने वाले यहां मंगलाचरण करते हुए लिख रहे हैं, ये रिमे गुरवे पूर्वम पदवाक्य प्रमाणतः व्याख्याताः सर्ववेदान्ताः तान् नित्यं प्रणतोऽस्म्यहम्। तो अब यहां पर टीकाकार जो है मंगलाचरण करते हुए कह रहे हैं, संकेत किया पूर्वम, पूर्व काल में जो है गुरु भी, गुरुओं ने, ऋषियों ने क्या किया, तो उसके लिए संकेत कर रहे हैं कि पद वाक्य प्रमाणतः, पद और वाक्य, उन पद और वाक्यों के प्रमाण को लेकर के। पद क्या है, तो पद के लिए संकेत किया गया। पद किसे कहते हैं, तो सुप्तिंगंतम पदम। पद कौन कहलाता है, जिसके अंत में सुप व्यक्ति का नियोजन किया गया हो अथवा तिगंत विभक्ति का नियोजन किया गया हो, ऐसे उस शब्द स्वरूप को पद शब्द से कहते हैं। जब उसके साथ में सुप विभक्ति का संबंध हो जाता है अथवा तिंग विभक्ति का संबंध हो जाता है, तो वह शब्द एक अर्थ से समन्वित हो जाता है और वह जो अर्थ है वो उस संबंध को, उस लक्ष्य को प्रतिपादन करने वाला हो जाता है। इसलिए पद शब्द का, शब्द न कह करके क्या कहा, पद। तो अब जो है सब शुभ विभक्ति हो गई, तो ये विभक्तियों को हमारे यहां ग्रामर में क्या कहा, कारक। क्या कहा, कारक। अंग्रेजी में क्या टेंस आदि कहते हैं, तो कारक। अब जो है कारक का तात्पर्य क्या है, तो कारक को विभाजित किया गया, उन्हीं कारकों को लेकर के विभक्ति शब्द का प्रयोग किया, उन कारकों में सात विभक्तियों की चर्चा की गई, प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थ, पंचम, षष्ठी और सप्तम। अब ये विभक्तियां जब कर दी गई, तो इन विभक्तियों को लेकर के ही जगत का जितना भी व्यवहार है वो इन कारकों को लेकर के या इन विभक्तियों को लेकर के ही व्यवस्थित होता है। जितना भी संबंध है और जितना भी व्यवहार है वो किसको लेकर के होता है, इस कारक को लेकर के या कारक के अंदर निहित जो विभक्तियां उनको लेकर के होता है। इसलिए जो कारक के अंतर्गत सप्तरूप विभक्त्यात्मक माने गए, उन कारकों का मतलब है कि उन विभक्तियों के साथ में चिन्हों का प्रयोग किया गया या संबंधों का प्रयोग किया गया। क्या, तो जैसे प्रथमा विभक्ति होती है, क्या होती है, प्रथमा विभक्ति, पहली विभक्ति, तो प्रथमा विभक्ति में क्या आता है, तो वहां चिन्ह बतलाया ने, इसलिए वहां प्रयोग कर देते हैं कर्ता ने, है ना। और द्वितीया व्यक्ति जहां होती है वहां उसका चिन्ह बतला दिया कर्म, तो को चिन्ह है उसका, तो कर्म को, तब क्या अर्थ निकलता है, कर्ता ने कर्म को। अब कर्ता ने कर्म को, फिर तृतीया व्यक्ति आती है करण अर्थ में, जिसका चिन्ह होता है द्वारा या से, तो कर्ता ने कर्म को करण से, ये अर्थ आगे क्रिया होती है तिगंत व्यक्ति की, तो किया, ये ऐसे राम ने बाण से बाली को मारा। तो ये वाक्य अब अर्थ बतलाने वाला हो गया। क्या अर्थ बतलाया, कि राम ने बाण से बाली को मारा। तो ये अर्थ कब निकला, तो कारक के समन्वित होने पर, कारक की उसमें स्थिति कब आई, तो जब सुप विभक्तियों को उसके साथ जोड़ा गया शब्द के साथ, तब जो स्थिति, ऐसे ही वृक्ष से पत्ते गिरते हैं पंचमी में, राम के लिए चिन्ह आ जाता चतुर्थी में संप्रदान आदि अर्थ में, और अपादान अर्थ में जो है से चिन्ह होता है, और इसी प्रकार से षष्ठी व्यक्ति जो संबंध का होता, तो का की के है अमुक का पुत्र है, ये सब संबंध आ जाए, और सप्तमी अधिकरण अर्थ में होती है, आधार को ही अधिकरण कहते हैं, तो अमुक पर ये पुस्तक है, मेज पर ये पुस्तक है, ये सप्तमी आदि। तो इस प्रकार से पद कहने का तात्पर्य है कि वाक्य के सटीक अर्थ को ग्रहण करने के लिए पद होना चाहिए, जब केवल शब्द से काम नहीं चलेगा, शब्द कैसा हो तो विभक्त्यात्मक शब्द हो, व्यवहार तभी होगा, भक्ति में व्यवहार नहीं होता। भक्ति क्या है, भक्ति का मतलब ही है जहां विभेद न हो, जहां विभाग न हो, और विभक्ति का मतलब है जहां पर विशेष रूप से भक्त कर दिया जाए, विभाजित कर दिया जाए, तो विभाजन जहां होगा, द्वैत जहां होगा, विभाग जहां होगा, वहीं पर व्यवहार हो सकता है, और जहां विभाग नहीं है तो व्यवहार कैसे होगा। तो विभाग में व्यवहार होता है, और जहां विभाग नहीं रह गया तो व्यवहार भी समाप्त, इसलिए भक्ति शब्द का भी अर्थ वहीं जाएगा, और यहां भी विभक्ति शब्द का अर्थ है विभाग। तो विभाग में ही ये चिन्ह काम करते हैं, विभाग में ही व्यवहार होता है, और उस व्यवहार के द्वारा जो है हम अपने लक्ष्य तक पहुंचने में समर्थ होते हैं। इसलिए यहां शब्द किया दिया गया पद, क्या कहा, पद। तो पद क्या है, तो जिसके साथ में विभक्ति का संबंध हो जाता है, और विभक्ति के संबंध हो जाने पर वह शब्द जो है पद कहलाने लगता, तब वो एक विशेष अर्थ को लेकर के आता, तब उस पद का शब्द का अर्थ एक विशेष अर्थ होता शब्द का, क्योंकि शब्द तो अनेक हैं और उन शब्दों के अनेक अर्थ भी निकलते हैं, लेकिन तात्पर्यार्थ अर्थ जो है वो कारक आदि को लेकर के ही संगत होता, इसलिए कहा पद। तो ऐसा जो पद और फिर वाक्य, तो वाक्य जो है वो क्या है, पदों के समूह का नाम ही वाक्य, पद के समूह। तो कर्तावाचक पद हो, कर्मवाचक पद हो, क्रियावाचक पद हो, तभी उसका अर्थ लगेगा। यदि केवल जो है वाक्य के अंतर्गत कर्ता ही कर्ता दे दिए जाए, कर्म का निर्वचन न किया जाए, तो उस वाक्य का अर्थ लगेगा। तब वहां संकेत किया पद और पद पूर्व परा अनुक्रम के अनुसार जो शब्द समूह या जो पद समूह, उसका नाम है वाक्य। सभी को वाक्य नहीं कहेंगे, है ना, वाक्य किसे कहेंगे, एक ही शब्द का हम रटन लगाते रहे तो वो वाक्य नहीं कहलाएगा। वाक्य क्या कहलाएगा, पूर्व पर के अनुक्रम को संगत करने वाले जो पद समूह, उन पद समूहों का नाम ही क्या है, वाक्य। तो अब इससे अर्थ क्या निकला, इससे अर्थ ये निकला, यहां पर जो ऋषियों ने उच्चारण किया, कथन किया, वो सारा कथन कैसा है, शब्दात्मक नहीं है, वो पदात्मक है, अर्थात उन पदों के अंतर्गत माने अर्थ वैशिष्ट अर्थ विद्यमान है और उन वैशिष्ट अर्थ वाले पदों से जिन वाक्यों का प्रयोग किया गया वो पूर्व और पर के अनुक्रम के साथ में है। ऐसा नहीं कि जिनका कोई क्रमहीन हो, जिनकी पूर्व परासंगति ही न लगे, ऐसा नहीं। तो पूर्व और पर के क्रम की है संगति के साथ में जो पदों का समूह, ऐसे वाक्य, तो ऐसे पद और वाक्यों को, और जब ऐसा पद और वाक्य होगा तो वही प्रमाण होगा। वही क्या होगा? वही किसी वस्तु को प्रमाणित या सिद्ध कर सकेगा। तो ऐसे पद वाक्य और प्रमाणतः प्रमाण रूप, ये संकेत करिए, तो जो पद और जो वाक्य प्रमाण स्वरूप हैं, ऐसे उन पद वाक्यों के प्रमाण स्वरूप पद वाक्यों के द्वारा गुरुवी ऋषियों ने क्या किया? कहने लगे व्याख्याता, व्याख्यान किया, विशेष रूप से हमारे लिए कहा। अब विशेष रूप से कहा, सामान्य रूप से नहीं। विशेष रूप से जो बात कही जाती है वो अनुकरणीय होती है। सामान्य रूप से कह दी जाए तो उसे आप की इच्छा के ऊपर वो निर्भर होती है, आप उसे कर सकते हो, नहीं भी कर सकते, लेकिन जो विशेष कहा जाता है वह अनुकरणीय होता है। और अनुकरणीय होता है क्यों? क्योंकि वो हमारे लिए लाभप्रद होता है, वो हमको लाभ देने वाला। इसलिए यहां संकेत किया कि पूर्व में ऋषियों ने पद और वाक्य और प्रमाणों को लेकर के हमारे लिए जो व्याख्यान किया, जो कथन किया या जो कहा, और वो क्या कहा तो उसको और विशिष्ट शब्द में कहा, कहने लगे सर्व वेदांता। जो कहा वो क्या है तो उसे को भी नाम दे दिया, क्या? सर्व वेदांता। अब यहां वेदांत शब्द से उपनिषद को भी हम वेदांत ही कहते हैं। उपनिषद को क्या कहते हैं? वेदांत। वैसे वेदांत का यौगिक अर्थ क्या है? तो वेदांत का यौगिक अर्थ है वेदई, वेदों के द्वारा, वेदई निडीतो यो अर्थः स वेदांतः। और अंत शब्द आया तब उसकी पूरी व्याख्या कर दी, वेदई रनंतो निर्णीतो यो अर्थः स वेदांतः। वेदों के द्वारा जो अंत रूप अर्थ निर्णीत किया गया, निश्चय किया गया, और वो भी कैसा? तो निर्गलित अर्थ, निश्चोत अर्थ, उस अर्थ का नाम ही है वेदांत। अंत शब्द समापन का भी वाचक होता है, और अंत शब्द जो है कहीं कहीं पर क्या है, कहने लगे मध्य का भी वाचक होता है। आपको लगेगा ये सब कैसे, शब्द अनेक अर्थों वाला होता, इसलिए पद शब्द का प्रयोग। जैसे एक व्याकरण के अंतर्गत सूत्र आता है, अचाम मध्य यो अंत अच, तट्टी संयम से आतो, स्वरों के मध्य में जो अंतिम अच, तो अंतिम शब्द नहीं वहां प्रयोग होता, अंत अच, अंत स्वर, उसकी टी संज्ञा होती, तो मध्य शब्द पहले प्रयोग कर दिया, तब वहां अंत शब्द का अर्थ क्या लगेगा? माने बीच का, मध्य का, तो वहां अर्थ क्या हो गया? अंत शब्द का अर्थ हो गया मध्य। और समापन अर्थ बहुधा हम लोग प्रयोग करते हैं, लेकिन यहां पर अंत शब्द का अर्थ है अंतः सिद्धांत। अंत क्या है? यहां अंत शब्द है सिद्धांत का वाचक, जिसमें किसी प्रकार का परिवर्तन संभव नहीं है, उसका नाम है अंतः। तो यहां पर क्या? वेदई रनंतो निडीतो यो अर्थः सिद्धांतः स वेदांतः। ये अर्थ निकलता। किसे वेदांत कहते हैं? तो कहने लगे वेदों के द्वारा जो निश्चोत निर्गलित निर्णीत अर्थ है, ऐसे उस अर्थ विशेष को अंत शब्द से सिद्धांत शब्द से कहा जाता है। इसलिए क्या हुआ, वेदांत शब्द का अर्थ हुआ वेदों का सिद्धांत। क्या अर्थ हुआ, वेदों का सिद्धांत। अब वेदों का जो सिद्धांत है, इसलिए सिद्ध शब्द पढ़ा है और आगे अंत शब्द पढ़ा। जो सिद्ध किया गया है उसके फिर आगे कोई परिवर्तन संभव नहीं है, अंतिम सिद्धांत ये भी कह सकते हो, है ना। तो उसी को क्या कहते हैं, वेदांत। वो क्या है, वेदांत अर्थात जो निर्णीत जिसमें किसी प्रकार का परिवर्तन संभव नहीं है, ऐसे उस अर्थ को उन ऋषियों ने कहा। और वो अर्थ कहां है, तो वेदों के द्वारा। उपनिषद कहां से है, कहा वेदों से। और वेदों से भी उपनिषद है तो उपनिषदों को वेदांत क्यों कहा, इसलिए कहा क्योंकि वेदों के अंतर्गत कर्म की भी चर्चा है, वेदों के अंतर्गत उपासना की भी चर्चा है और वेदों के अंतर्गत ज्ञान की भी चर्चा। लेकिन वहां कर्म की चर्चा जो की गई, उपासना की चर्चा जो की गई, वो उपासना के लिए या कर्म के लिए नहीं की गई, किंतु उसका लक्ष्य क्या है, अंतःकरण शुद्धि अर्थ। और अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा तो क्या होगा, तो उससे लाभ क्या होगा, तब से बतलाया कि इस शुद्ध अंतःकरण में ही ज्ञान का प्रकाश का प्रादुर्भाव होगा। और जिस ज्ञान का प्रादुर्भाव शुद्ध अंतःकरण में होता है, वही ज्ञान क्या है, सिद्धांत है, और वही है उपनिषद। इसलिए उपनिषदों को भी वेदांत शब्द से कह दिया, उपनिषद भी क्या है, वेदांत। इसलिए यहां संकेत किया कि वेदांता और कैसा वेदांता, तो कहने लगे जो नित्य है, शब्द और प्रयोग कर दिया, वेदांता नित्य, जो जिसमें कभी भी किसी भी काल में बाधता नहीं है, जिसके अंदर बाध्य धर्म है ही नहीं, जो किसी से बाधित नहीं होता, तो ऐसा उस वेदांत का व्याख्यान करने वाले जिन्होंने पूर्व में हमारे लिए ही कर दिया, ऐसे उन ऋषियों को हम जो है क्या करते हैं, तो फिर नित्यम शब्द को ले लो, मनि सदा उनको नमस्कार करते, सदा उनको हम प्रणाम करते। तो ये जो है मंगलाचरण किया। अब इस मंगलाचरण को लेकर के तो पूर्व में, तो पूर्व शब्द से हम क्या समझे, तो पूर्व शब्द तो है कितना है, व्यापक हो जाता, पूर्व की परंपरा लंबी है और लंबी परंपरा में सबसे पहले सबसे पूर्व को हम ले लें तो वहां क्या कहा गया, यो ब्रह्मांडम विदधाति पूर्वम, क्या किया, जिसने ब्रह्मा को निर्मित किया है, विशेषेण दधातीति विदधाति, अर्थात विशेष रूप से धारण किया, वहां निर्माण भी शब्द नहीं है, वास्तव में क्या है, विशेष रूप से जिसने ब्रह्मात्म को धारण किया। और जब धारण किया तो उस ब्रह्मात्म को जिसको धारण किया, उस धारणार्थक पदार्थ में ही या धारणार्थक उस व्यक्ति विशेष में ही क्या कर दिया, कहा वेदांश प्रहडोती, उसके लिए क्या कर दिया, कहने लगे उसमें वेदों का प्रहरण कर दिया, वेदों को दिया ऐसा नहीं कहा, क्या कहा, प्रहरण। और प्रहरण क्या है, तो जैसे जब जन्म होता है तो जन्म होने के बाद क्या बच्चे के अंतर्गत श्वास का आना जाना होता है कि जन्म के साथ ही होता है, क्या कहूं, साथ ही होता है ना। और यदि श्वास का आना जाना होता है तब तो आप उस बालक को उपादेय समझते हो, उसकी सुरक्षा करते हो, पालन पोषण करते हो। और यदि श्वास का आगमन निर्गमन न हो तो तो क्या समझते, ये तो निरर्थक है, तो उसे कैसा मान लेते हो, निरर्थक, तब उसका कोई भी पालन पोषण आदि आप नहीं करते। तो इसका मतलब हुआ कि जिसको उन्होंने धारण किया और धारण करके उसमें क्या किया, प्रेरण कर दिया, किसका, श्वास का। इसलिए श्वास ही क्या है, का जीवन है, जीवन है माने सत्ता है, विद्यमानता है, और श्वास नहीं है तो विद्यमानता भी नहीं, इसलिए वायु तुम्हें प्रत्यक्षम ब्रह्मासी कह चुके। अब जब तक श्वास है तब तक क्या है, वो बच्चा है ऐसा प्रयोग करोगे, और श्वास नहीं है तो है शब्द का प्रयोग उसके लिए किया जा सकता नहीं। इसी प्रकार से संकेत यह कर रहे हैं कि जब तक उसमें श्वास है तब तक उसकी सत्ता है, और श्वास नहीं है तो सत्ता भी नहीं। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ यहां पर श्वास शब्द से किसको कहा, वेदांश प्रेरणोति तस्मै, किसका प्रेरण किया, वेद का प्रेरण, किसका किया है, वेद का। तो वेद क्या है, तो इसलिए कह देते हो वाचस्पति मिश्र ने ब्रह्मसूत्र के हैं अंतर्गत जो है जब अपनी टीका लिखी तो वहां पर क्या कहा, निःस्वस्यमस्य वेद, वेद क्या है, कहा परमात्मा की निःश्वास है। कहा क्या मतलब, मतलब यह है जब तक परमात्मा की सत्ता है तब तक वेद है, और जब तक वेद है तब तक परमात्मा, ये मतलब हो गए। और वेद क्या है, तो वेद विद धातु से बनता है, वेद किससे बनता है, विद धातु से, और विद धातु जो है चार अर्थों में प्रयुक्त होती है, विद धातु जो है उसके चार अर्थ हैं, विद सत्तायाम, विद ज्ञाने, विद अविकांक्षायाम, और विद लाभे। विद धातु जो है सत्ता को बतलाने वाली है, विद्यमानता को बतलाने वाली, और विद धातु जो है किसको बतलाने वाली, ज्ञान को बतलाने वाली, प्रकाश को बतलाने वाली, और विद धातु जो है किसको बतलाने वाली, अविकांक्षा, इच्छा, और विद धातु किसको बतलाने वाली, का लाभ को। और इसी को लेकर के क्या बना, मनुष्य की अनंत इच्छाओं का जब वर्गीकरण किया गया तो चार पुरुषार्थों के रूप में कह दिया, और पुरुषार्थ शब्द का अर्थ क्या होता, पुरुषई रर्थीयते इति पुरुषार्थ, पुरुष के द्वारा जो चाहा जाता है, पुरुष के द्वारा जो अर्थना की जाती है, पुरुष के द्वारा जो याचना की जाती है, उसी का नाम क्या है, पुरुषार्थ, अथवा पुरुष का जो प्रयोजन उसी का नाम क्या है, पुरुषार्थ। तो अब पुरुष की चाहना ले लो तो उसका कोई अंत नहीं, लेकिन अब अंत नहीं है तो कैसे हिसाब लगाया जाए, तब उसका वर्गीकरण कर दिया गया, और वर्गीकरण ऐसे नहीं किया, वेद से किया गया, चार रूपों में उसका वर्गीकरण किया गया, क्या, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये इन चार धातुआत्मक होने के कारण ये चतुष्टय पुरुषार्थ की चर्चा कर दी जाती है। अब जो है इस प्रकार का जो वेद, तो वो वेद हमें क्या बतलाता है, तो सारी हमारी व्यवहारिक स्थिति में जो पुरुष की, पुरुष मात्र की, प्राणी मात्र की जो लक्ष्य भूता प्रवृत्ति है, उस सारी प्रवृत्ति का परिचायक कौन है, वेद है। अब उस वेद का जो है सिद्धांत क्या है, तो वो बतलाने के लिए फिर कह दिया कि वो क्या है, मोक्ष। तब क्या कह दिया, इह खलु धर्मार्थ काम मोक्षाख्येषु चतुर्थ विद पुरुषार्थेषु मोक्ष एव परम पुरुषार्थ। कहा पुरुषार्थ तो चारों, लेकिन चारों पुरुषार्थ जो है उनमें जो है सर्वश्रेष्ठ कौन है, उत्तम कौन है, तो कहने लगे इन चारों पुरुषार्थों में मोक्ष ही अंतिम पुरुषार्थ है, वही सर्वश्रेष्ठ पुरुषार्थ है। ये संकेत किया। तो ये प्रवृत्ति तो चतुर्थात्मक है, लेकिन चतुर्थात्मक प्रवृत्ति होते हुए भी लक्ष्य रूप क्या है, अंतिम क्या है, उपादेय क्या है, उत्कृष्ट क्या है, श्रेष्ठ क्या है, तो कह दिया मोक्ष एव। क्या है? मोक्ष ही है। ये संकेत किया। कहा क्यों? कहने लगे इसलिए तद्यथेह कर्म चितो लोका क्षीयते। वेदांत परिभाषा आप लोगों ने स्वाध्याय में पढ़ी होगी, तो उसमें ये सब आया पहली प्रारंभ में। वहां संकेत किया गया कि जिस प्रकार से इस लोक के अंतर्गत कर्म चित कर्म से उपार्जित होने वाले, किसान जो है फसल को उपार्जित करता है ना, और बिजनेसमैन जो है अपने पदार्थों को वो भी उपार्जित करते, ऐसे ही सर्विसमैन भी करते, सभी लोग करते। अब उन पदार्थों को हम उपार्जित करते हैं, चाहते हैं, चाह करके उनको हम जो है लाभ लेते हैं, प्राप्त हुए। प्राप्त होने के पश्चात क्या होता है? उनका उपयोग करते हैं, और जब उपयोग करते हैं तो क्या होता? उपयोग करने पर वो पदार्थ नष्ट हो जाते, छीयते, क्षय को प्राप्त हो जाते, तब पुनः उनके लिए पुरुषार्थ करना पड़ता, और पुनः पुरुषार्थ करते हुए पुनः पुनः यही स्थिति चलती रहती। ये संकेत। और कहने लगे इतना ही नहीं, ये तो जो है सामान्य पदार्थों की चर्चा हो गई, इस अर्थ की बात की, अदर्थ का मतलब है पदार्थ विशेष। और फिर कहने लगे तो धर्म, तो धर्म के लिए क्या कहा? धर्म के लिए कहा एवमेवा मूत्र पुंड चितो लोका खियते। जिस प्रकार से हम जो है लोक में जिन पदार्थों को प्राप्त करते हैं और प्राप्त करके उनके उपभोग के द्वारा जो है वो समाप्त हो जाते हैं, ठीक इसी प्रकार से एवं एव, ठीक इस प्रकार से ही जोड़ भी दे दिया। क्या है? कहा पुंड चितो लोका छिये आभुत्र, मन इस लोक में ही नहीं, ये तो पृथ्वी लोक की बात की। कहा जिस स्वर्ग आदि की कल्पना की है, ऐसे स्वर्ग आदि लोक में जो है जो पदार्थों हमने संचित किए धर्म के द्वारा, और धर्म के द्वारा जो प्राप्त होने वाले जो पदार्थ हैं, उन पदार्थों का भी क्या है? क्षय हो जाता। ये है कि इनसे उनमें श्रेष्ठता अधिक है, इन पृथ्वी के पदार्थों से जो है अधिक गुणवान है, ये सब तो है, लेकिन नाश को वो भी प्राप्त होते, ये धर्म समान है। अब जब नाश को प्राप्त हो जाएंगे तो तृप्ति तो कभी दे सकते नहीं। इसलिए कहा कि मोक्ष एव परम पुरुषार्थ। मोक्ष ही क्या है? परम पुरुषार्थ है, क्योंकि मोक्ष का कभी नाश आदि नहीं होता, उदय आदि नहीं होता। मोक्ष जो है वो नाश रूप नहीं है और उदय रूप भी नहीं। अब थोड़ा और विचार कर लो, ये चार पुरुषार्थों की चर्चा कर दी, और आप वेदों में उपनिषदों में क्या पढ़ते हो और लोक में भी अनुभव करते हो, क्या करते हो? जब कहते हो कि मैं हूं, क्या कहते हो? मैं हूं। अब ये मैं हूं ये कहना कब होता है?